तीसरा स्कंद सातवां अध्याय नौवें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। मैत्रेय उवाच सेयम भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम उत बंधनम। सो इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की श्री मैत्रेय ने कहा, कुछ बद्ध जीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि पर ब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे अबद्ध हैं। यह समस्त तर्क के विपरीत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान जो कि 100% आध्यात्मिक हैं, उस माया शक्ति के कारण स्वरूप नहीं हो सकते जो व्यष्टि आत्मा, व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत, इंडिविजुअल व्यष्टि आत्मा के ज्ञान को प्रच्छन्न कर देती है, किंतु वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं कि माया या बहिरंगा शक्ति भी भगवान का अंश है। जब व्यास देव ने भगवान का साक्षात्कार किया तो उन्होंने भगवान को अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ देखा, जो व्यष्टि जीवों के शुद्ध ज्ञान को आवृत करती है। बहिरंगा शक्ति इस तरह क्यों कर्म करती है, इस प्रकार निम्नवत विचार किया जा सकता है। जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रील जीव गोस्वामी जैसे महान टीकाकारों ने विश्लेषण किया है, यद्यपि भौतिक माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से पृथक होती है, तथापि यह भगवान की अनेक शक्तियों में से एक है, और इस तरह प्रकृति के भौतिक गुण निश्चय ही भगवान के ही गुण हैं। शक्ति तथा शक्तिमान पृथक पृथक नहीं है। यद्यपि ऐसी शक्ति भगवान के साथ एकाकार रहती है, किंतु वे इससे कभी भी वशीभूत नहीं होते। यद्यपि सारे जीव भी भगवान के विभिन्न अंश हैं, किंतु वे भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। भगवान का अचिंत्य योगम ऐश्वरम, जिसका वर्णन भगवद गीता 9:5 में हुआ है, कूप मंडूक दार्शनिकों द्वारा ठीक से समझा नहीं जाता। वे इस सिद्धांत के समर्थन में कि नारायण स्वयं भगवान दरिद्र नारायण बनते हैं, ये प्रस्ताव रखते हैं कि भौतिक शक्ति परमेश्वर को पराजित करती है, किंतु शिला जीव गोस्वामी तथा शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी व्याख्या में एक अति सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि सूर्य स्वतः सर्वतः प्रकाश देता है, किंतु बादल, अंधेरा तथा हिमपात ये सब सूर्य के विभिन्नांश हैं। सूर्य के बिना बादलों या अंधकार से आकाश के आच्छादित होने की कोई संभावना नहीं रहती, ना ही पृथ्वी पर हिमपात हो सकता है, बर्फ गिर सकती है। यद्यपि सूर्य द्वारा जीवन का पालन होता है, किंतु सूर्य द्वारा उत्पन्न अंधकार तथा हिमपात से जीवन विचलित भी होता है, किंतु यह भी तथ्य है कि सूर्य कभी भी स्वयं अंधकार या बादल या हिमपात से पराजित नहीं होता। सूर्य ऐसे उपद्रवों से बहुत दूर रहता है। जो अल्पज्ञानी हैं वे ही कहते हैं कि सूर्य बादल से या अंधकार से ढक जाता है। इसी तरह परब्रह्म भगवान सदैव भौतिक शक्ति के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, यद्यपि यह उनकी शक्तियों में से एक है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। अतः माया द्वारा परब्रह्म के पराजित होने पर बल देने का कोई कारण नहीं है। बादल, अंधकार तथा हिमपात सूर्य की किरणों के एक नगण्य अंश को ही ढक सकते हैं। इस तरह प्रकृति के गुण किरणों के सदृश जीवों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ये जीव का दुर्भाग्य है जो अकारण नहीं है कि भौतिक शक्ति उसकी शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद पर प्रभाव डालती है। शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद का इस तरह प्रच्छन्न होना अविद्या कर्म संज्ञा के कारण है। वह शक्ति जो उन सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव डालती है जो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। विष्णु पुराण, भगवद गीता तथा अन्य समस्त वैदिक ग्रंथों के अनुसार ये सारे जीव भगवान की तटस्थता शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं, और इस तरह वे सभी सदैव भगवान की शक्ति होते हैं, शक्तिमान नहीं। सारे जीव सूर्य की किरणों के समान हैं, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। यद्यपि सूर्य तथा उनके किरणों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, किंतु कभी कभी सूर्य की किरणें सूर्य की अन्य शक्ति जिसका नाम बादल या हिमपात है, द्वारा पराजित हो जाती हैं। इस तरह यद्यपि जीव गुणात्मक रूप से भगवान की पराशक्ति के साथ एक हैं, किंतु उनमें कनिष्ठा भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होने की प्रवृत्ति होती है। सच्चिदानंद है, लेकिन भौतिक शक्ति जो कि असत अचित निरानंद है, उससे पराजित हो जाती है। वैदिक स्रोतों में कहा गया है कि सारे जीव अग्नि के स्फुलिंगों जैसे हैं। अग्नि के स्फुलिंग भी अग्नि होते हैं, किंतु स्फुलिंगों के की ज्वलन शक्ति मूल अग्नि से भिन्न होती है। जब स्फुलिंग मूल अग्नि से संपर्क तोड़कर बाहर उड़ जाते हैं, तो वे अग्निविहीन वायुमंडल से प्रभावित होते हैं। इस तरह वे स्फुलिंग के रूप में अग्नि के साथ अपनी शक्ति बनाए रखते हैं, किंतु मूल अग्नि के रूप में नहीं। ये स्फुलिंग मूल अग्नि के भीतर शाश्वत रीति से उनके भिन्नांश के रूप में रह सकते हैं, किंतु जिस क्षण ये स्फुलिंग मूल अग्नि से पृथक हो जाते हैं, तभी उनके दुर्भाग्य तथा कष्ट प्रारंभ होते हैं। स्पष्ट निष्कर्ष यह निकला कि भगवान जो कि मूल अग्नि है, कभी पराजित नहीं होते, किंतु अग्नि के सूक्ष्म स्फुलिंग माया के मोहक प्रभाव द्वारा पराजित हो सकते हैं। यह कहना अत्यंत हास्यास्पद तर्क है कि भगवान अपनी ही भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होते हैं। भगवान भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जीव बद्ध अवस्था में भौतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह भगवद गीता का कथन है। वे कूप मंडूक दार्शनिक जो यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भगवान सतोगुण द्वारा पराजित हो जाते हैं, वे स्वयं ही उसी भौतिक शक्ति द्वारा विमोहित रहते हैं, यद्यपि वे अपने आप को मुक्त आत्माएं मानते हैं। वे अपने तर्कों के समर्थन में मिथ्या तथा श्रम साध्य वाग्जाल प्रस्तुत करते हैं जो भगवान की उसी मोहिनी शक्ति का उपहार है, किंतु बेचारे कूप मंडूक दार्शनिक ज्ञान के मिथ्या विचार के कारण इस स्थिति को समझ नहीं सकते। श्रीमद्भागवतम 6.9.34 में कहा गया है, दुर्वबोध इव तवायम विहार योगो यद अशरणो शरीर इदम अन्वेक्षितास्मत समवाय आत्म नैवा विक्रिय माणेन सगुणम अगुणः सृजसि पासि हरसि। इस तरह देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि उनके कार्यकलापों को समझ पाना अतीव कठिन है, किंतु जो लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं, वे उन्हें कुछ कुछ समझ सकते हैं। देवताओं ने स्वीकार किया कि यद्यपि भगवान भौतिक प्रभाव या सृष्टि से पृथक हैं, तो भी वे देवताओं के माध्यम से पूर्ण विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। काफ़ी लंबा पुरपोट है, हाँ, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल ये श्लोक है, इसलिए प्रभुपाद ने बहुत समय लिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साहुदूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ये विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में संवाद चल रहा है, तो नौवें श्लोक से जो है मैत्रेय जी विदुर के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैत्रेय जी विदुर जी के पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सो विदुर जी ने पूछा था कि परम पुरुषोत्तम भगवान तो पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं, अविकारी हैं, तो वे भौतिक प्रकृति के जो तीन गुण हैं उनसे किस तरह से संबंधित हैं, वो भौतिक प्रकृति के तीन गुण कैसे कार्य कर रहे हैं, तो किस तरह से जो प्रकृति के तीन गुण हैं वो प्रकट हो रहे हैं, अप्रकट हो रहे हैं, कैसे संचालित हो रहे हैं, तो भगवान का उनसे क्या संबंध है। अगर भगवान का भौतिक प्रकृति से मतलब भौतिक गुणों से संबंध है तो क्या भगवान उससे दूषित तो नहीं हो रहे, ऐसा तो नहीं है कि भगवान जो है प्रभावित हो रहे हैं उससे, उसका असर जो भौतिक गुण है उसका असर भगवान पर भी आ रहा है, मतलब क्या भगवान में कुछ बदलाव आ रहा है। हालांकि कहते हैं कि भगवान अविकारी हैं, लेकिन क्या भगवान में बदलाव आ रहा है, क्योंकि भगवान जो तीन गुण है भगवान से प्रकट हुए हैं। तो जिस तरह एक पुत्र पिता से उत्पन्न होता है, लेकिन हम देखते हैं कि पिता पुत्र के प्रभाव में आ जाता है, नहीं आता है कि नहीं आता, पुत्र के कहने पर बहुत सारे अनचाहे कार्य भी उसको करने पड़ते हैं। तो क्या जैसे भौतिक प्रकृति भगवान से प्रकट हुई है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि भगवान भी उसके प्रभाव में आ रहे हैं। तो जो भगवान का सच्चिदानंद अविकार्य रूप है, क्या उसमें परिवर्तन तो नहीं आ जाता। मेरा मन बहुत परेशान हो रहा है इस प्रश्न को सोचकर। सातवें श्लोक में कह रहे हैं विदुर जी, क्या बोल रहे हैं, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको स्पष्ट करें। सो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम देख रहे हैं कि विदुर जी व्यथित हैं, परेशान है, उनका मन परेशान हो रहा है, वो एक प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहते हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि मैत्रेय जी उनको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सक्षम है, ये शंका का निवारण वो कर सकते हैं। जब तक इस शंका का निवारण नहीं होगा, ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, विदुर जी अपने मन में शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा ही प्रसंग हमें अर्जुन के बारे में भी मिलता है ना। युद्ध के लिए गए अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ, लेकिन वहाँ पर जाकर मोहग्रस्त हो गए। तो मोहग्रस्त होने पर उन्होंने कहा, भगवान मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या अपने गुरुओं पर अपने पिता समान लोगों पर जो है प्रहार करना उचित है कि नहीं उचित है, सब लोग मर जाएंगे तो क्या वर्ण संकर हो जाएंगे, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, जो हमारे परिवार में कुल में जितने रीति रिवाज हैं प्रथाएं हैं सब नष्ट हो जाएगी। नष्ट क्यों हो जाएगी, क्योंकि उनको बताने वाला क्यों नहीं, कोई नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ पुरुष ही तो मरेंगे, स्त्रियां तो सुरक्षित हैं घर में, तो उन्होंने कहा स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, क्योंकि सुरक्षा नहीं रहेगी इसलिए स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, वो विवेक खो देंगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस कारण से परिवार की जो प्रथाएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो सत्कर्म करने की प्रथा है वो खत्म हो जाएगी, चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी। तो यद्यपि हम इस युद्ध को धर्म युद्ध समझ के कर रहे हैं, लेकिन इससे अधर्म को बढ़ावा मिलेगा, नहीं। सो इसी प्रकार विदुर जो हैं वो मैत्रेय जी से प्रश्न पूछ रहे। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि अर्जुन का प्रश्न पूछना तो उचित था, सामने भगवान थे, नहीं, लेकिन विदुर जी के सामने तो भगवान नहीं है, वो मैत्रेय जी हैं। तो क्या भगवान से प्रश्न पूछना और मैत्रेय जी से प्रश्न पूछना एक समान है या नहीं, है ना? तो भगवान से प्रश्न पूछना और भगवान के भक्त से प्रश्न पूछना एक बराबर है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में संस्तुति कर रहे हैं कि आप गुरु की शरण लीजिए और परिप्रश्नेन सेवया, और उनसे जिज्ञासा करके उनकी सेवा कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वो आपको ज्ञान दे सकते हैं। हाँ, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो आपको ज्ञान दे सकते हैं। क्यों? ज्ञानिना तत्वदर्शिना, क्योंकि वो तत्वदर्शी हैं, उनको नॉलेज है, उनको ज्ञान है। ज्ञानिना तत्वदर्शिना, तो ऐसा नहीं है कि भगवान सामने आएंगे तो ही प्रश्न पूछेंगे। भगवान के भक्त से भी हमें उतनी ही श्रद्धा और उतने ही विश्वास। श्रद्धा का मतलब विश्वास। हाँ, श्रद्धा शब्द विश्वास, सुदृढ़ निश्चय शब्द, जो श्रद्धा शब्द है उसका मतलब है कि पूरा विश्वास है किसी व्यक्ति में या किसी सिद्धांत के अंदर या भगवान में, है ना? श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि शंकाग्रस्त श्रद्धा है। शंकाग्रस्त श्रद्धा श्रद्धा नहीं है, क्योंकि उसमें अभी पूरा विश्वास नहीं है। हाँ, पूरा विश्वास का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति की क्षमता में कुछ हमें डाउट है। तो क्या श्रद्धा का मतलब है कि हमें जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए? क्या विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या इसका मतलब है कि विदुर जी की श्रद्धा में कमी है? नहीं, क्योंकि अभी हमने बताया कि श्रद्धा शब्द विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, नहीं तभी श्रद्धा कहलाएगी वो। तो क्या जिज्ञासा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमें भगवान में और भगवान के भक्तों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये मेरा कल्याण करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। लेकिन हम में कमी है, हम अभी बात को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों को जानना अभी बाकी है, इसीलिए जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा करने का मतलब आप वक्ता पर, आप अपने गुरु पर या भगवान पर शंका नहीं कर रहे, आप अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए भगवान के प्रति, गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को और परिपक्व और गाढ़ा और शुद्ध करने के लिए हमें प्रश्न पूछना भी चाहिए, और इस प्रश्न पूछने में कुछ भी बुराई नहीं है। सो विदुर जी ने जो प्रश्न पूछा था कि कैसे ये संभव है कि भगवान भौतिक प्रकृति के जो गुण हैं उनसे उत्पन्न भी हुए हैं, और क्या वो प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो यहाँ पर मैत्रेय जी उसका उत्तर दे रहे हैं कि भगवान प्रभावित नहीं हो रहे। हाँ, और इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको शिला प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और शिला जीवा गोस्वामी की व्याख्या के द्वारा। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद बता रहे हैं सूर्य के उदाहरण से, जैसे जो सूर्य है वो जिस प्रकार जो सूर्य है वो एक डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, फ्लो टूट जाता है बेसिकली। सूर्य के प्रभाव से जो है समुद्र का जल वाष्पित होता है, भाप बन जाता है, और वो जो जल है उससे बादल बन जाते हैं। और जब वो बादल आसमान पर छा जाते हैं तो हम सूर्य को देख नहीं सकते। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्योंकि हम सूर्य को नहीं देख पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है, बादलों ने हमारी दृष्टि को ढक लिया है, हम सूर्य को नहीं देख पा रहे। सूर्य बादलों से बिल्कुल परे, बहुत ऊपर, उससे बिल्कुल अप्रभावित है, लेकिन हमारी दृष्टि प्रभावित हो गई है, हम बादलों की वजह से सूर्य को अभी नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य में कुछ विकार आ गया। इसी प्रकार ये जो ये बादल हैं, इसकी तुलना हम भौतिक प्रकृति से कर सकते हैं, तीन गुणों से कर सकते हैं। ये तीन गुणों के से ढक जाने के कारण हम भगवान के दर्शन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भौतिक प्रकृति से प्रभावित हो गए। जैसे हमने पिता और पुत्र का उदाहरण दिया था, पिता पुत्र से इसलिए प्रभावित हो जाता है क्योंकि वो उससे आसक्त है, लेकिन भगवान के षड ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य, ये जो षड ऐश्वर्य है, इसका वर्णन पराशर ऋषि ने किया है। तो पराशर ऋषि बता रहे हैं कि भगवान के छह ऐश्वर्य हैं, और उन छह ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य क्या है, वैराग्य का। तो भगवान सबसे अटैच्ड भी हैं, सबका ध्यान भी रखते हैं, लेकिन वैरागी भी हैं भगवान। भगवान किसी से आसक्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि भगवान उनसे बहुत ज़्यादा आसक्त हैं। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण, जो उनकी 16,108 रानियाँ हैं, उनके साथ में इस तरह से व्यवहार करते थे, जैसे प्रभुपाद अंग्रेजी में कह रहे हैं हैंडपैक्ड हस्बैंड। हैंडपैक्ड हस्बैंड का मतलब है जो पत्नी व्रता पति है, पत्नी के पीछे ही भाग रहा है, उसी के कहने पे चल रहा है ना। उसका कुछ और शब्द भी है इसको, जो पत्नी के पीछे ही भागता है उसको कुछ और भी कहते हैं, हाँ, जोरू का गुलाम। हाँ, तो जैसे जोरू का गुलाम हो, लेकिन भगवान कृष्ण की पत्नियां क्या सोच रही थी। जब भगवान कृष्ण की पत्नियां जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय सब लोग इकट्ठे हुए थे, तो पांडवों का परिवार भी वहां आया हुआ था, तो कुंती द्रौपदी इत्यादि जो हैं स्त्रियां, वो भगवान कृष्ण की रानियों से बात कर रही थी। तो उन रानियों ने बोला कि भगवान हमारी इच्छा पूरी तो करते हैं, लेकिन आसक्त नहीं है, हमें डर लगा रहता है, कभी भी चले जाएंगे, हमें डर लगा रहता है। और आप देख भी सकते हो, भगवान ने एक बार रुक्मिणी जो देवी हैं उनसे मजाक किया कि तुम मेरे चक्कर में कहाँ पड़ी हुई हो, कहीं और क्यों नहीं चली जाती, और इतने अच्छे और सक्षम व्यक्ति पुरुष उपलब्ध हैं, मैं मतलब बिल्कुल, कुछ लोग लंपट बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं लोग, हाँ, तो मेरे चक्कर में कहाँ पड़ी हो तुम। तो रुक्मिणी जी बहुत घबरा के बेहोशी हो गई थी, तो भगवान ने उनको कहा मैं तो मजाक कर रहा था, नहीं। सो क्योंकि भगवान वैरागी हैं, भगवान अनासक्त हैं, उदासीन रहते हैं भगवान, हाँ, भगवान हमेशा तटस्थ रहते हैं, निरपेक्ष रहते हैं। इसीलिए जिस तरह एक पिता पुत्र से प्रभावित हो जाता है, यद्यपि पुत्र को पिता ने उत्पन्न किया, उसी प्रकार भगवान कभी प्रभावित नहीं होते। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि देखो पिता भी प्रभावित हो गया तो भगवान भी प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, भगवान की संतान ही तो हैं। तो भगवान को हम प्रभावित कर पाएंगे, भगवान को कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता, भगवान में कभी भी कहीं भी कोई विकार नहीं आ सकता। भगवान स्वेच्छा से, भगवान आनंद लेने के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं कर सकते हैं, लेकिन इससे कभी भी ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भगवान प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है कि भगवान आनंद ले भी रहे हैं आनंद दे भी रहे हैं फिर भी अविकारी हैं। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं पश्य मे योगम ऐश्वरम की भगवद गीता के नौवें अध्याय के पांचवें श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं पश्य मे योगम ऐश्वरम, ये मेरे योग ऐश्वर्य है, जितने भी विपरीत विरोधाभासी भाव है वो पूर्णतया मुझ में संबंधित हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, कोई भी विरोधाभास नहीं रहता। तो भगवान आनंद ले सकते हैं लेकिन ये भगवान का योग ऐश्वर्य है कि भगवान तब भी अप्रभावित रहते हैं, है ना। सो थोड़ा समय कम है तो मैं एक दो पॉइंट्स और बोल के इसको विराम दूंगा। तो यहाँ पर जो आखिर में प्रभुपाद बात कर रहे हैं और प्रभुपाद जो है भागवतम के छठे स्कंद के नौवें अध्याय का 34वां श्लोक प्रभुपाद उद्धृत कर रहे हैं और उन्होंने बोला इसी तरह देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि उनके कार्यकलापों को समझ पाना अतीव कठिन है। तो भगवान के कार्यकलापों को समझ पाना कठिन है तो कैसे भगवान के कार्यकलापों को समझा जा सकता है, तो ये प्रश्न जो है ये दुर्योधन के पिता, क्या नाम है, धृतराष्ट्र, हाँ दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने भी ये प्रश्न पूछा सनत सुजात नामक ऋषि से, महाभारत में इसका वर्णन आता है। तो जब सभा होने वाली थी जिसमें यह निर्णय होना था, जिसमें पांडवों ने संदेश भेजा था कि मुझे 5 गांव ही दे दो हमें हम संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन दुर्योधन ये सोच के बैठा था सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। हाँ तो धृतराष्ट्र को उस पर फैसला लेना था, नींद नहीं आ रही थी, बड़ा परेशान था। तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया और विदुर को बोला कि मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, नीति वचन सुनाओ मुझे। तो विदुर ने उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, आप पढ़ेंगे महाभारत में तो बहुत उसमें सुंदर वर्णन है। विदुर जी ने बताया धृतराष्ट्र को कि आपको नींद नहीं आ रही है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि जो कमजोर होता है, जो इच्छा से पीड़ित होता है, जो चोर होता है, और अगर कोई व्यक्ति ताकतवर है, अगर उसका सामना अपने से भी ज्यादा ताकतवर से हो जाए, शेर को सवा शेर मिलना, तो इन लोगों की नींद उड़ जाती है। चोर को आपने सोते हुए देखा है, हमेशा जाग के चौकस रहता है, कोई देख तो नहीं रहा, पुलिस तो नहीं आ रही, चौकीदार तो नहीं आ रहा, नहीं तो कितनी अच्छी। तो ऐसी बहुत सारी बातें विदुर जी ने बोले धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र ने कहा अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन मैं प्रभावित नहीं हूँ, मुझे मतलब इसके ऊपर इसको कार्यान्वित करने की कोई इच्छा नहीं मेरे में आ रही। तो विदुर जी ने ये सोचा कि शायद मेरी शुद्धता में कमी है। विदुर जी शुद्ध भक्त हैं लेकिन और धृतराष्ट्र में कमी है, आसक्ति का चश्मा लगाने के कारण, आसक्ति के प्रदूषण के कारण वो नहीं देख पा रहा, हाँ वो नहीं देख पा रहा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन विदुर जी सोच रहे हैं कि मुझ में ही कमी है, मैं इसको ठीक से बता नहीं पा रहा। तो विदुर जी ने मेडिटेट किया, ध्यान लगाया और एक बहुत ही महान ऋषि सनत सुजात चमक रहे थे, वो एक्चुअली उनसे लाइट निकल रही थी, इतने प्रभावशाली थे वो। तो उन्होंने उनको मानसिक रूप से उनको इनवाइट किया, आमंत्रित किया, तो वहाँ पर प्रकट हो गए वो सनत सुजात जी। हाँ और उन्होंने बोला क्या चाहिए, तो सनत सुजात जी ने भी तुरंत समझ लिया कि जो धृतराष्ट्र है इसको कुछ भी बोलो मानेगा नहीं, है ना। अक्रूर जी भी गए थे धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, युद्ध से बहुत पहले की बात है, तब तो पांडव भी वहीं रह रहे थे, और धृतराष्ट्र जो है उसके देख रेख में दुर्योधन अनेक तरह के अत्याचार कर रहा था। तो अक्रूर जी ने बोला था उसको कि देखो जो राजा है वो तो प्रजा को भी संतान मानता है और भाई के पुत्र तो संतान ही होते हैं, तो राजा को तो प्रजा और अपनी संतान से समान व्यवहार करना चाहिए, तुम तो अपनी संतान से भी समान व्यवहार नहीं कर रहे, तो भाई कम से कम संतान से तो समान व्यवहार कर लो। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि आपकी बात बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है आपकी, मेरे हृदय में ठहर नहीं रही, बिजली की तरह कौंध रही है, जैसे बादलों में बिजली कौंधती है लेकिन रुकती नहीं है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे हृदय में भी कौंध रही है, आपकी बात चमक रही है, एकदम मेरा हृदय प्रकाशित हो गया, फिर गायब हो जाती है, ठहर नहीं रही उसको वो वहां पर जो आपकी शिक्षाएं हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं क्यों नहीं ठहर रही, क्योंकि वो आसक्त है बहुत ज्यादा। तो अगर हम बहुत ज्यादा आसक्त होंगे अपने घर में, परिवार में, शरीर से, किसी भी वस्तु से, अपने मन से, अपने अहंकार से, तो हम अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे जरूर, लेकिन हमारे मन में वो घर नहीं कर पाएगी वस्तु, वो ज्ञान जो है हमारे मन में टिकेगा नहीं, लुप्त हो जाएगा, है ना, गायब हो जाएगा वो ज्ञान। हम सुनेंगे भूल जाएंगे। बहुत सारे भक्त बोलते हैं हमें कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारा मन उसमें नहीं रमा हुआ, हमारा मन कहीं और रमा हुआ है, हमारा मन कहीं और आ सकता है। तो जब तक हमारा मन कहीं और आ सकता रहेगा, तब तक जो भगवत ज्ञान है, जो भक्ति योग है, उसको हम सुनेंगे लेकिन आत्मसात नहीं कर पाएंगे। आत्मसात नहीं करेंगे तो हम सुनेंगे लेकिन याद नहीं रख पाएंगे, भूल जाएंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये आसक्ति के कारण है। तो सनत सुजात ने सोचा कि चलो, क्योंकि विदुर ने मुझे आमंत्रित किया है, तो मेरा कर्तव्य है कि राजा को मैं सदुपदेश दूँ। तो धृतराष्ट्र ने पूछा प्रश्न, ये मैंने प्रसंग क्यों लेके आया, क्योंकि धृतराष्ट्र ने सनत सुजात से पूछा कि भगवान सच्चिदानंद है, हम असित अचित निरानंद है, हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं, भगवान को कैसे जाना जा सकता है, भगवान दिव्य हैं, हम बद्ध हैं, तो बद्ध व्यक्ति भगवान को कैसे जान सकता है, नहीं, कितना अच्छा प्रश्न है ये। तो सनत सिद्धार्थ ऋषि ने कहा कि भगवान को जाना जा सकता है, भगवान की दिव्य प्रकृति को जाना जा सकता है, पहली बात गुरु का आश्रय लेकर। गुरु का आश्रय लेना परम आवश्यक है। अगर कोई ये सोचे कि गुरु का आश्रय लिए बिना हम भगवान को जान सकते हैं, तो वो दिवा स्वप्न ले रहा है, वो माया नगरी में रह रहा है, भ्रमित है पूरी तरह से। जब तक हम गुरु का आश्रय नहीं लेंगे, और गुरु का आश्रय लेने का मतलब है गुरु की सेवा करना, परिप्रश्नेन सेवया, गुरु से जिज्ञासा करना और गुरु की आज्ञा का पालन करना। जैसे श्रील प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में, अपने लेक्चर्स में बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारे निर्देश दिए हैं, तो हमें यथासंभव उन शिक्षाओं का, उन आदेशों का पालन करना चाहिए। यही गुरु पाद आश्रय है। गुरु पाद आश्रय ये नहीं है कि जबरदस्ती जाके गुरु की चरण रज लेके अपने सिर पे मलते रहो, उससे क्या होगा। गुरु की चरण रज गुरु की शिक्षा है। तो सनत सुजात ऋषि ने बोला कि देखो गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, और गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, अपनी इंद्रियों को आत्मनिग्रह करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, इंद्रियों के कहने के अनुसार काम नहीं करना चाहिए, हमें इंद्रियों को अपने अनुसार चलाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। और इस तरह अगर हम व्यवहार, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करो, गुरु का जो है आश्रय लो, भक्तों का संग करो, इंद्रियों को नियंत्रित करो। अगर हम ये कार्य करेंगे तो हमारी प्रकृति भी दिव्य हो जाएगी। हमारी प्रकृति भी दिव्य हो जाएगी। सुशील जीवा गोस्वामी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका उदाहरण देते हैं भागवतम के तीसरे स्कंद के सातवें अध्याय के नौवें श्लोक में। इसका उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार अनेक मणियाँ होती हैं जिन पे सूर्य की रोशनी पड़े तो बहुत तेज प्रकाश देती हैं, लेकिन जब अंधेरे में उनखा जाए तो प्रकाश देना बंद कर देती हैं। लेकिन कई मणियाँ ऐसी भी होती हैं जो अंधेरे में भी प्रकाशमान रहती हैं। तो ऐसी बहुत सी मणियाँ आपको पाताल लोकों में मिलेंगी। पाताल लोकों में सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं है, वहाँ पे मणियों से ही रोशनी हो रही है। हम यहाँ पर उपलब्ध नहीं है हमें ऐसी मणियाँ, लेकिन पाताल लोक भरा पड़ा है ऐसी मणियों से, और उसी से पूरा पाताल लोक प्रकाशित हो रहा है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो मणियाँ प्रकाश नहीं दे रही हैं वो बद्ध जीव है, और जो मणियाँ अंधेरे में भी प्रकाशमान है वो वैष्णव है, भक्त है। भौतिक जगत में रह रहे हैं फिर भी वो दिव्यता प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार लोहा आग में लगातार अगर उसके संपर्क में रहे तो आग की जो गुण है उसको वो स्वीकार कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति गुरु का आश्रय लेता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, भक्तों का संग करता है, इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तो वो भी इस असत अचित निरानंद जगत में रहते हुए भी वो दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। और जब दिव्यता को प्राप्त वो कर लेता है और साथ में फिर वो भगवान पर ध्यान लगाएगा, अगर उस अवस्था में भगवान पर ध्यान लगाया जाए तो भगवान को समझा जा सकता है, क्योंकि आप दिव्य धरातल पर स्थित हो और दिव्य धरातल पर स्थित व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। तो मेडिटेशन का, ध्यान का क्या मतलब है? भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कलयुग में भगवान की दिव्यता को समझने के लिए, भगवान की प्रकृति, भगवान की महिमा को थोड़ा सा समझने के लिए जो ध्यान लगाने की सर्वोत्तम विधि है भगवान के दिव्य नामों का जप करना। तो सनत सिद्धार्थ ऋषि ने उनको बोला कि अगर आप इस तरह से व्यवहार करोगे तो आप अवश्य भगवान को जान पाओगे। यद्यपि धृतराष्ट्र ने सनत सुजात ऋषि की इन शिक्षाओं पर पालन नहीं किया, फिर भी क्योंकि उसने भक्तों का संग किया था और क्योंकि भक्त बहुत कृपालु हैं, इसीलिए विदुर जी ने दोबारा कुछ समय के बाद जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था तो विदुर जी ने दोबारा धृतराष्ट्र को आध्यात्मिक शिक्षा दी, और उस समय क्योंकि जो आसक्ति का विषय खत्म हो चुका था धृतराष्ट्र के लिए, आसक्ति का विषय अभी मौजूद नहीं था, तो धृतराष्ट्र उस दिव्य ज्ञान को समझ पाए और इस दिव्य ज्ञान के बल पर उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी समेत राजमहल का सुख त्याग दिया और भगवान का भजन किया उन्होंने आखिरी समय में और सिद्धि प्राप्त की। सो इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि अगर हम अभी ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं तो हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, भक्तों के संग में लगातार बने रहना चाहिए। अगर हम भक्तों के संग में लगातार बने रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी आसक्ति विषयों से ख़त्म होगी, अपने परिवार से ख़त्म होगी, कम होगी, और जितनी जितनी आसक्ति हमारे परिवार से कम होती चली जाएगी उतनी ही आसानी से, सुगमता से हम भगवान के दिव्य नाम, गुण रूप लीला इत्यादि पर ध्यान लगा पाएंगे। तो आवश्यक ये है कि कुछ भी हो हम भक्तों के हमेशा संग में रहें, कुछ भी हो कैसी भी परिस्थिति हो हतोत्साहित नहीं हो। इसीलिए रूपा गोस्वामी कह रहे हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात, कि उत्साह से निश्चय और धैर्य से धैर्य रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, कैसे होगा, कैसे हम जो है भक्ति में प्रगति करेंगे। धैर्य रखो, आप धैर्य रखोगे और गुरु और भक्तों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते रहोगे, चलते रहोगे, तो समय ऐसा आएगा जब आप अनुभव कर पाओगे जो प्रभुपाद शिक्षाएं दे रहे हैं, जो भगवान की शिक्षाएं भगवद गीता भागवतम में लिपिबद्ध हैं, उन शिक्षाओं के सार को, वो शिक्षाएं कितनी व्यवहारिक हैं और हमारे लिए कितनी लाभप्रद हैं, हम उसको समझ पाएंगे। अभी नहीं भी समझ पा रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आवश्यकता है कि हम धैर्यपूर्वक लगे रहें, हम भक्तों का संग हतोत्साहित होकर ना छोड़ें। ठीक है, इस श्लोक में वैसे तो श्रील प्रभुपाद अचिंत्य भेदाभेद तत्व की भी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि समय नहीं है इसलिए हम अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो है वो सिद्धांत की भी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी आगे अवसर मिलेगा तो हम अचिंत्य भेदाभेद तत्व की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप, तो भगवान किसी से भी आसक्त नहीं है, तो क्या भगवान अपने भक्तों से भी आसक्त नहीं है? हाँ, ये प्रश्न है। तो भगवान आसक्त हैं और भगवान आसक्त नहीं भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। हाँ, जिस प्रकार भगवान पक्षपाती भी हैं और निरपेक्ष भी हैं, तो भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन भगवान कभी भी सिद्धांत को नहीं छोड़ते, धर्म को नहीं छोड़ते भगवान, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि अगर मैंने ही धर्म की अवहेलना कर दी तो बाकी जो लोग, जो जनसाधारण है, मेरे उदाहरण को देख रही है तो वो भी धर्म की अवहेलना कर देंगे मेरे इस आचरण का सहारा लेकर। तो भगवान कभी भी सिद्धांतों की, धर्म की अवहेलना करके भक्तों के साथ पक्षपात नहीं करते। भगवान कर सकते हैं, सक्षम हैं, लेकिन करते नहीं हैं। तो भगवान भक्तों के प्रति पक्षपाती होते भी हैं, लेकिन वो पक्षपात जो है, वो जो आसक्ति है, वो आसक्ति भगवान के जो भगवद गीता में नियम दिया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतय भजामि हम, आप जितना आसक्त होंगे भगवान उतना ही आसक्त होंगे आपसे। तो भगवान आपसे प्रतिकार के रूप में जो आप भगवान को ऑफर कर रहे हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हुए उतनी मात्रा में भगवान आपके साथ आसक्त रहेंगे, ना ज़्यादा ना कम। तो ये भगवान का वैराग्य है, और भगवान का ये वैराग्य है, भक्तों से आसक्ति भी भगवान का वैराग्य है, क्योंकि हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं और हम सोचते हैं भगवान हमारी सेवा देख रहे हैं। हाँ, तो भगवान देखते हैं। अब ये भी भगवान का वैराग्य है कि भगवान हमारी सेवा को रिकॉग्नाइज करते हैं, भगवान हमारी सेवा को की प्रशंसा करते हैं। इसमें क्या वैराग्य है? इसमें वैराग्य है कि भगवान की सेवा करोड़ों लक्ष्मियां कर रही हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवे मानो, करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, लेकिन उन सेवाओं का भोग करते हुए भी भगवान समय निकालते हैं कि भगवान हमारी सेवा को, हम बद तुच्छ दूषित जीवों की सेवा को भगवान देखते हैं और स्वीकार करके उसका प्रतिफल देते हैं। वो समय निकालना भी भगवान के वैराग्य का ही लक्षण है, नहीं तो भगवान का मैंने तो देखा ही नहीं। कई बार आप बहुत सारी सेवा करते हो तो आप सोचते हो कि मंदिर के अध्यक्ष को पता चला कि नहीं चला। तो जिस भक्त के मार्गदर्शन में सेवा कर रहा हूँ, क्या उसको पता चला कि मैंने कितनी सेवा की? हाँ, हो सकता है उसको पता नहीं चला। भगवान के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ भी करेंगे भगवान के लिए, छोटी से छोटा सेवा भी आप करेंगे, भगवान तुरंत उसको देख लेते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। भगवान ऐसा, भगवान नहीं कहते कि मैं तो वहाँ पर बिजी था, मैं तो बांसुरी बजा रहा था, मैं तो गायें चला रहा था, मैंने देखा नहीं। भगवान वो सब करते हुए भी, क्योंकि भगवान परम वैरागी हैं, उदासीन भाव रखते हैं, भगवान प्रभावित नहीं होते उससे, प्रभावित नहीं होते भगवान। इसीलिए समय निकाल लेते हैं समभाव से। भगवान अपने जो भक्त अभी कनिष्ठ भक्त हैं, जो अभी वैष्णव प्राय हैं, अभी शुद्ध वैष्णव नहीं हैं, उनकी सेवा को भी भगवान देखते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, और उनकी सेवा के अनुसार भगवान उनको फल भी देते हैं। ठीक है, और किसी का प्रश्न? हाँ, विजय प्रभु। आध्यात्मिकता को क्या आसक्ति आध्यात्मिक ज्ञान से ज़्यादा प्रबल है? हाँ, क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान भी पढ़ रहे हैं और भौतिक जगत में भी रह रहे हैं, तो लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन असर नहीं कर रहा हमारे ऊपर, है ना? तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो आसक्ति से ज़्यादा प्रभावशाली है। आसक्ति ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान रूपी गोली तो खा रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर रहे। तो क्योंकि हम परहेज नहीं कर रहे, दवाई खा रहे हैं, तो परहेज नहीं करने से जो उसका असर होना चाहिए वो असर हमारे पे नहीं हो रहा। तो जब तक हम दवाई खाएं आध्यात्मिक ज्ञान की, और अगर हम जब तक साथ में परहेज नहीं करेंगे, इसलिए तो सनत सुजात ऋषि ने कहा कि आत्मनिग्रह, अपनी तपस्या करो, इंद्रियों पर नियंत्रण लगाओ, है ना? जब तक हम परहेज नहीं करेंगे, जब तक हम भक्तों की शरण स्वेच्छा से हंसी खुशी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आध्यात्मिक ज्ञान रूपी दवाई तो हम खाएंगे लेकिन जो अपेक्षित प्रभाव है वो प्रभाव नहीं आएगा। तो उसमें दवाई का दोष नहीं है, उसमें दवाई का दोष नहीं है। दोष जो है वो दवाई खाने वाले में है कि वो डॉक्टर की पूरी बात नहीं मान रहा। सो अगर डॉक्टर की पूरी बात मानी जाएगी तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है तुरंत हमारे जो अविद्या है, जो ज्ञान है, उसका नाश कर देगा। ठीक है, सो आध्यात्मिक ज्ञान परहेज पर निर्भर ही क्यों है? नहीं, ये क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर है? तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। आध्यात्मिक ज्ञान परहेज पे क्यों निर्भर है? हम इसका उत्तर देंगे, आप बोलेंगे ये उस पे क्यों निर्भर है? हाँ, सो खैर, इसका उत्तर है, आध्यात्मिक ज्ञान परहेज पर इसलिए निर्भर है क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। तो भगवान की इच्छा क्यों है? हाँ, ये क्या बात हुई कि आध्यात्मिक ज्ञान को परहेज पर ही आश्रित कर दिया कि परहेज करोगे तो आध्यात्मिक ज्ञान असर करेगा, परहेज नहीं करोगे तो आध्यात्मिक ज्ञान असर नहीं करेगा। नहीं, इसका कारण ये है, ये भगवान की इच्छा क्यों है? क्योंकि हम अपनी इच्छा से भगवान से विमुख हो गए थे। हाँ, तो भगवान हमारी इच्छा जानने के लिए हमें परहेज करने के लिए कह रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान तो बैठ के सुन लिया, पत्थर रख दोगे वो भी सुन लेगा, हाँ, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है सुनना, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो कैसे दिखाई देगा? वो परहेज से दिखाई देगा। जब हम परहेज करेंगे, जब हम भक्ति के विधि विधानों का पालन करेंगे, तो हम इन विधि विधानों के पालन के द्वारा भगवान को ये संकेत दे रहे हैं, हम भगवान को ये मैसेज भेज रहे हैं कि हे भगवान, हम आपके पास वापस आने के प्रति गंभीर हैं। तो ये परीक्षा है जिसके द्वारा भगवान ये जानेंगे कि आप गंभीर हो या नहीं हो। और जब आप गंभीर हो, अगर भगवान को लगेगा, आपके कहने से नहीं, भगवान को लगना चाहिए, आप अपनी जान नछावर कर दो, भगवान को नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने एक कुछ काम कर दिया छोटा सा, जैसे अजामिल ने नारायण बोल दिया, भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया तो कर लिया। आप ये नहीं कह सकते उसने तो कुछ नहीं किया था, मैंने इतना कुछ किया, हाँ, तो ऐसा कैसे, वो बड़ा कैसे, मैं छोटा कैसे, वो बात नहीं है। हम परहेज कर रहे हैं कि हम भगवान को ये संदेश दे रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं परहेज करके, विधि विधानों का पालन करके, कि हम स्वेच्छा से आपके विमुख हुए थे, अभी गुरु की कृपा से वापस हम में ये चेतना जागृत हो गई है कि हमें आपकी सेवा करनी चाहिए और मैं स्वेच्छा से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, हाँ। सो ये संदेश हम देंगे भगवान को विधि विधानों का पालन करने से। इसीलिए भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान परहेज पर आधारित नहीं है, आश्रित नहीं है, लेकिन भगवान देंगे नहीं, इसीलिए भगवान कह रहे हैं ददामि बुद्धियोगम, मैं दूंगा आपको आध्यात्मिक ज्ञान, लेकिन पहले आप बताओ तो सही कि आप लेना भी चाहते हो। ऐसा तो नहीं आपकी झोली फटी हुई है, आप फैला के बैठ खड़े हो, डालो, भगवान कुछ भी डालेंगे उसमें गिर जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो पहले आप अपनी झोली को सिलो परहेज के सुई धागे से। जब आप सिल लोगे और भगवान को बोलोगे कि मैं तैयार हूँ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो टक करके भगवान आपकी झोली में आध्यात्मिक ज्ञान डाल देंगे, एकदम से अनुभूति हो जाएगी। एकदम से कैसे अनुभूति होगी? एक बार प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ सुबह मंगला आरती के बाद बैठे थे एक रूम में, तो जैसे धीरे धीरे सूरज उगा तो खिड़की में से एक रोशनी की किरण आई और पूरा जो कमरा है रोशनी से भर गया। तो प्रभुपाद ने कहा ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, एकदम से एक क्षण में सूर्य की किरण आएगी, भगवान की कृपा आएगी और एकदम से आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन वो स्थिति लाने के लिए हमें भगवान को ये दिखाना पड़ेगा कि हम सुपात्र हैं, हम कुपात्र नहीं हैं, ठीक है। चलो, और किसी का प्रश्न है?